पृष्ठ 240 रिपोर्टाज। रिपोर्टाज गद्य की एक साहित्यिक विधा है जो धीरे धीरे पाश्चात्य प्रभाव से यहाँ प्रचार में आ रही है या जिसकी चर्चा होने लगी है। यह शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया है। इसका संबंध अंग्रेजी रिपोर्ट से है, किंतु यह सरकारी या अखबारी रिपोर्टों से सर्वथा भिन्न है। रिपोर्ट की भांति यह घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, किंतु इसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आश्रय डाले उसको प्रभावमय बना देता है। इसमें लेखक छोटी छोटी घटनाओं को देकर पाठक के मन पर एक सामूहिक प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है। इसका संबंध वर्तमान से होता है। ये घटनाएं कल्पना प्रसूत नहीं होती है। इन घटनाओं के वर्णन द्वारा वह चरित्र को भी प्रकाश में ले आता है। इसका लेखक घटना स्थल पर उपस्थित होता है और वह प्रायः आंखों देखी बातें ही लिखता है। वह कलम का शूर तो होता ही है, साथ ही चंद भदाई की भांति साहसी तथा वीर भी होता है। रिपोर्टाज ऐसे विषयों पर जो जन हृदय को सहज में प्रभावित करते हैं लिखे जाते हैं। बंगाल का अकाल, भारत के विभाजन के पश्चात यातायात में जो यातनाएं हुई, कश्मीर का हमला आदि इस विधा के विषय हैं। रिपोर्टाज का साहित्य सोवियत प्रभाव में अधिक रचा गया है। इसमें प्रगतिशील लेखकों जैसे प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान, प्रभाकर माचवे में यह विधा अधिक लोकप्रिय हुई। पृष्ठ 241 है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि और लोग इस विधा को अपनाएं। रेडियो रिपोर्ट से जन्माष्टमी महोत्सव का, राष्ट्रपति की सवारी आदि का वर्णन प्राय इसी रूप में होता है। यहाँ पर श्री मलखान सिंह द्वारा लिखित अंतिम मोर्चा शीर्षक रिपोर्टाज से एक उद्धरण उदाहरणार्थ हंस से दिया जाता है। इसमें स्वतंत्रता से पूर्व ग्राम में हिंदू मुसलमानों की फूट और फलस्वरूप विभाजन का वर्णन, साथ ही राष्ट्रीय सरकार द्वारा की हुई सर्वहारा वर्ग की उपेक्षा और पूंजीपतियों के कुपोषण की भी कुछ अतिरंजित कथा है, किंतु इसका प्रभाव और इसकी शैली इस विधा की विशेषता की परिचायक है। किंतु साम्राज्यवाद के चतुर सचिव ने राष्ट्रीयता की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और रातों रात उसने आकर उसकी सेनाओं को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का दिया, जबकि शत्रु का अंतिम मोर्चा भर ही तोड़ने को शेष रहा था। राष्ट्रीयता की सेनाएं एक दूसरे की तरफ मुड़ पड़ी। एक भाई दूसरे भाई के खून से अपनी शक्ति को तोलना चाहता था। दुश्मन की शीश पर बिजली की तरह कौंध कर चमकने वाली शमशीर एक दूसरे की गर्दन पर चलना चाहती थी। असहाय बंदनी माता के सामने ही उसके दो समर्थ पुत्र आपस में भिड़कर मिटना चाहते थे। आह, उस दासी माँ ने अपनी गुलामी के कितने वर्ष, मास और दिन बेटों के जवान होने तक गिन गिन कर काटे थे, लेकिन वह अभागिन अधिक न देख सकी। एक दर्दनाक चीख के साथ वह बेहोश हो गई। हिमालय के सिर पर जैसे वज्र टूट पड़ा, वह दोनों हाथों से उसे पकड़े कराह कर झुक गया। विंध्य और नीलगिरी उठती हुई हिचकियों को रोकने का भीम प्रयत्न करने लगे। गंगा का कलनाद करुण क्रंदन में परिवर्तित हो गया। एक क्षण के लिए राष्ट्रीयता स्तंभित हो गई। वह इस आत्मसंहार को रोकने में असमर्थ एवं किंग कर्तव्य मूर्ख थी। देश का दुर्भाग्य अट्टहास कर उठा। करने जब साम्राज्यवाद की चढ़ बनी थी, वह अपनी शर्तों पर राष्ट्रीयता की संधि करने को मजबूर करने जा रहा था। आहत अभिमान से उसकी निगाह नीचे हो गई। वह 80 करोड़ भुजाओं का अपमान था, ऐसा अपमान जिससे शहीदों की आत्माएं भी तड़प कर बोल उठी थी। अभागे भारत, विवश होकर कितनी बार तूने अपमान का कड़वा घूंट नहीं पिया, और अब इतने बलिदानों के बाद भी कब तक पिए जाएगा? बोल, सदियों के बंदी, बोल। इसके उत्तर में ही जैसे आसमान में बादलों के दल गरज उठे हों, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान हो आजाद। साम्राज्यवाद के पैरों तले की धरती खिसक गई। राष्ट्रीयता ने चिहुक कर देखा। प्रश्न 242। जैसे वेगवान मारुत के हाथों में तीन झंडे एक साथ लहराते हुए इस अपमान को रोकने को आगे बढ़े चले आते हैं। वे तीन झंडे थे, तिरंगा हरा और लाल, और उसके नीचे भूख और बेकारी के नेतृत्व में अपार शोषित मानवता बढ़ती चली आ रही थी। समालोचना, आलोचक के अपेक्षित गुण। जिस प्रकार कवि संसार से उत्पन्न अपनी भावात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रिया को प्रकाश में लाता है और अपने पाठकों को अपने हृदय के रस में मग्न करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार आलोचक कवि की कृति से जागृत अपनी प्रतिक्रिया को, चाहे उसका शास्त्रीय आधार हो और चाहे उसकी सूझबूझ गहरी पैठ और व्यक्तिक रुचि का प्रकाश में लाकर दूसरों को अपने भावों और विचारों से अवगत करा देना चाहता है, वह वास्तव में ग्रंथकर्ता और पाठक के बीच मध्यस्थ या दूरभाषिया का काम करता है। उसका दोनों के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। एक ओर वह कवि की कृति का सहृदय व्याख्याता और निर्णायक होता है, तो दूसरी ओर वह अपने पाठक का विश्वास पात्र और प्रतिनिधि समझा जाता है। कवि की भांति वह दृष्टा और सृष्टा दोनों ही होता है। लोक व्यवहार तथा शास्त्र, जिसमें काम शास्त्र अथवा समालोचना शास्त्र भी सम्मिलित है, का ज्ञान, प्रतिभा और अभ्यास आदि साधन जैसे कवि के लिए अपेक्षित है, उसी प्रकार समालोचक के लिए भी। इन बातों के अतिरिक्त आलोचक के लिए कवि या लेखक के प्रति सहृदयतापूर्ण ईमानदारी और अपनी बात को सत्य का निर्वाह करते हुए सुरुचिपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक ढंग से दूसरों तक पहुंचाने की कला भी आवश्यक है। इस प्रकार कुशल आलोचक के हाथ में आलोचना भी रचनात्मक कलाकृति का रूप धारण कर लेती है। आलोचना के मूल्य। समालोचना केवल आलोचकों की वाणी का विलास मात्र नहीं है, वरन उसका मूल्य साहित्य और समाज दोनों के लिए है। आलोचक किसी कवि की कृति के गुण दोषों के विवेचन तथा उसकी व्याख्या के अतिरिक्त उसका सामाजिक मूल्य देखता है। आलोचक के लिए यह प्रश्न बड़े महत्व का हो जाता है कि कवि या लेख की रचना से सामाजिक आदर्शों में कहाँ तक उथल पुथल होगी और वह समाज को उन्नति के मार्ग में ले जाने में कहाँ तक और किस रूप में सहायक होगी। आलोचक मूल्य संबंधी आलोचना कर साहित्य और समाज रचना पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। आलोचक पाठकों का ही प्रतिनिधि नहीं होता, वरन लेखकों और पाठकों दोनों का पथ प्रदर्शक भी होता है। अच्छी आलोचनाओं द्वारा लेखक और कवि सामाजिक आदर्शों से अवगत होते रहते हैं। वे अपने आदर्शों को समाज के आदर्शों से मिलाकर जो नई दिशा प्राप्त करते हैं, उसी के अनुकूल पृष्ठ 243। वे अपनी कृतियों को ढालने का प्रयत्न करते हैं, यद्यपि कविगण निरंकुश कहे गए हैं, तथापि आलोचक उन निरंकुशों के भी अंकुश बन जाते हैं। स्वस्थ और सुष्ठु आलोचनाएं नवीन साहित्य सृजन में भी प्रेरक होती रहती हैं। आलोचक की अनुकूल प्रतिक्रिया से कवि का उत्साह बढ़ता है और उसकी वाणी का ओझ बढ़ता है। अच्छी आलोचनाएं केवल लेखकों के लिए ही अंकुश का काम नहीं करती, वरन वे सीधी तौर से भी सामाजिक आदर्शों को प्रभावित करती रहती हैं। पाठक आलोचकों के चश्मे से कृतियों का अध्ययन करने लगते हैं और उनके दिए हुए आदर्शों के अनुकूल साहित्य की मांग भी होने लगती है। इस प्रकार समालोचक भी समाज सुधारकों के साथ एक प्रबल शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं और सत साहित्य की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार शासन के आलोचक शासन को शिथिलता से बचाए रखते हैं, उसी प्रकार साहित्य के आलोचक साहित्य में शिथिलता और कुत्सितता नहीं आने देते और उसकी गतिविधि निर्धारित करने में सहायक होते हैं। प्रकार और उदाहरण। हम आलोचना के प्रकारों पर इस पुस्तक के पहले भाग में 18वें अध्याय में यथोचित प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ पर उनका साक्षात परिचय देकर उदाहरण दिए जाते हैं। निर्णयात्मक आलोचना। इस प्रकार की आलोचना में शास्त्रीय आधार पर काव्य के गुण दोषों का विवेचन किया जाता है और उनको उन्हीं के अनुकूल श्रेणीबद्ध भी किया जाता है। उदाहरण, धसत तरंगिनी में तीर ही तरल आए, ग्रस्यो ग्राह पाए खैची पानी बीच तरज्यो, करने कलप करे कल्पना कूल ठाणे, कहा भयो कहा करुणा के संग लरज्यो, कठिन समय विचारी साहब सो गयो हारी, हठी पग ध्यान रघुनाथ ज्यो ही सरज ज्यो। असरन सरन विरद की परज देखियो, पहले गरज भई पीछे गज गरजियो। अलंकार कुल छंद में मुख्य अलंकार चंचलातिशयोक्ति ही है। जिस प्रकार से सत कवि के काव्य में बिना उद्योग के भी और बहुत से अलंकार आ जाते हैं, वही बात मतिराम के इस छंद में हुई है। गुण प्रसाद गुण मुख्य है, परंतु कहीं कहीं जैसे द्वितीय पद में ओज गुण के भी सूचक पद हैं। वृत्ति उपयुक्त पद में मधुरा और पुरुषावृत्ति का मिश्रण है, इस प्रकार यह प्राणावृत्ति है। इसी का नाम सात्वती वृत्ति भी है। पृष्ठ 244। रस इस छंद में पराये दुख को दूर करने का जो उत्साह है वह स्थायी भाव है। इसका आलंबन विभाव दुखार्थ गजराज है। गजराज की दीनता भरी पुकार गरजियो उद्वीपन विभाव है, स्थाई भाव उत्साह है। इसलिए यह वीर रस का दया वीर रस नामक रूपांतर है। काव्य कुल छंद में वाच्य के तट से जो अर्थ लिया गया है वही प्रधान होने से यह लक्षणामूलक मध्यम काव्य है। चिंत प्रयोग हमारी राय में इलाज विरची प्रयोग चिंत है। इलाज शब्द अरबी भाषा का है, हिंदी शब्द सागर में यह शब्द पुल्लिंग माना गया है। दीन बंधु निज नाम की सुलाज की प्रयोग में सु शब्द वृथा है। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र लिखित मतिराम ग्रंथावली की भूमिका से व्याख्यात्मक आलोचना। इस प्रकार की आलोचना में आलोचक सहृदयता पूर्वक कवि की अंतरात्मा में प्रवेश कर उसके भावों को समझाने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार कर उनके हृदयंगम कराने में सहायक होता है। वह व्याख्याता ही नहीं वरन सृष्टा भी बन जाता है। उदाहरण प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। राम कथा के भीतर के स्थल अत्यंत मर्म स्पर्शी है। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा, इन स्थलों को गोस्वामी जी ने अच्छी तरह पहचाना है। इसका उन्होंने अधिक विस्तृत और विशद वर्णन किया है। आचार्य शुक्ल कृत तुलसीदास। आगे चलकर शुक्ल जी उपयुक्त दृश्यों में से एक एक की सहृदयता पूर्ण व्याख्या करते हैं, जिससे कि तुलसीदास का काव्य कौशल पाठक पर अपने आप प्रकट हो जाता है। चित्रकूट में राम और भरत के मिलन का दृश्य लीजिए। चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ है वह शील और शील का, स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन है। इस मिलन से संगठित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य है। यह झांकी अपूर्व है। भाई भक्ति में भरत नंगे पांव राम को मनाने जा रहे हैं। मार्ग में जहां सुनते हैं कि यहां पर राम लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उस स्थल को देख आंखों में अश्रु भर लेते हैं। रामवास स्थल विटप विलोके उर अनुराग रहत नहीं रोके। मार्ग में लोगों से पूछते जाते हैं कि राम किस वन में है। जो कहता है कि हम उन्हें सकुशल देख आए हैं, वह उन्हें राम लक्ष्मण के समान ही प्यारा लगता है। प्रिय संबंधी आनंद के अनुभव की आशा देने वाला एक प्रकार से उस आनंद का पृष्ठ 245 जगाने वाला है। आचार्य शुक्ल जी कृत तुलसीदास। ऐतिहासिक आलोचना। इस प्रकार की आलोचना में कवि का मूल स्रोत ऐतिहासिक और सामाजिक स्थितियों में खोजा जाता है। आलोचक उन बाह्य प्रभावों को व्यक्त करता है जो कवि या लेखक पर पड़ते हैं। ये प्रभाव प्रायः समय की गतिविधि संबंधी होते हैं। उदाहरण हिंदू और मुसलमान यद्यपि अलग अलग बने रहे, परंतु उनमें भावों और विचारों की एकता अवश्य स्थापित हुई। दोनों ही जातियों ने अपने धार्मिक आदि विभेदों को वहीं तक बना रहने दिया जहां तक उनके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए उनकी आवश्यकता थी। इसके आगे दोनों धीरे धीरे मिलने लगे। यद्यपि विजयी मुसलमान शासक अपने विजयोन्माद में धार्मिक प्रशंसता के पक्के उदाहरण बन रहे हैं रहे थे, पर साधारण जनता उनकी सी कठोर मनोवृत्ति धारण न कर मेल की ओर बढ़ रही थी। कबीर ने मेल की बड़ी प्रबल प्रेरणा दी थी। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को यह समझाने का प्रयत्न किया था कि हमको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर एक है, केवल नाम भेद से अज्ञानवश हम उसे भिन्न भिन्न समझा करते हैं। धार्मिक विवाद व्यर्थ है, सब मार्ग एक ही स्थान को जाते हैं। इस प्रकार कबीर ने परोक्ष सत्ता की एकता स्थापित की। थोड़े समय पीछे कवियों का ऐसा संप्रदाय भी उदय हुआ जिसने व्यवहारिक जीवन की एकता की ओर अधिक स्थान अधिक ध्यान दिया है। यह संप्रदाय सूफी कवियों का था जो प्रेम पंथ को लेकर आगे चला था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के हिंदी भाषा और साहित्य से मनोवैज्ञानिक आलोचना। इस प्रकार की आलोचना में कवि के वैयक्तिक स्वभाव, परिस्थिति और प्रभाव से कृति का आधार देखा जाता है। ऐतिहासिक में देश की परिस्थिति के प्रभाव को महत्व दिया जाता है और मनोवैज्ञानिक में व्यक्ति की आंतरिक और उसके निजी जीवन से संबंध रखने वाली बाह्य परिस्थितियों को। उदाहरण, हिंदी का छायावाद अनेक प्रकार के सामाजिक कुंठाओं की सृष्टि है, जिसमें मुख्यतम है कुंठित श्रृंगार भावना। नरेंद्र की रसाभिव्यक्तियों में इसी कुंठा का नग्नतम रूप मिलता है। इस कुंठा के लिए उनका अपना संकोची स्वभाव और सामाजिक परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। यह कुंठा जितनी विवशता जन्य यानी व्यक्ति के प्रतिकूल होगी, उतना ही अधिक मन में घुमड़न पैदा करेगी और फिर वह घुमड़न उतनी ही अधिक दीवार स्वप्नों की सृष्टि करेगी। शूल फूल और प्रवासी के गीत दोनों में स्पष्टता स्वीकृत रूप से छायावादी प्रेरणा है। आज नरेंद्र का दृष्टिकोण बदल गया है, परंतु स्वभाव की मूल वृत्तियां सरलता प्रश्न 246 से नहीं बदल सकती। जितना ही नरेंद्र अपने व्यक्तिगत सुख दुख को क्षयग्रस्त मनोविकार समझ उसे सामाजिक हित में अंतर्भूत करने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही शायद उनका न्यूरोसिस बढ़ता जाता है। विचार और अनुभूति। जिन्होंने नरेंद्र जी को निकट से देखा है, वे नगेंद्र जी की उपयुक्त बातों की बात की सार्थकता समझ सकेंगे। तुलनात्मक आलोचना। इस प्रकार की आलोचनाओं में एक ही विषय के दो कवियों की व्यापक रूप से तुलना कर दोनों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है, अथवा कभी कभी एक कवि की विभिन्न कृतियों की तुलना की जाती है। दो कवियों की व्यापक विशेषताओं की तुलना का उदाहरण श्री शांति प्रिय द्विवेदी की सांगीतिकी से दिया जाता है। प्रगतिवादी में यशपाल द्वारा भाव सत्य का समावेश होते हुए भी लक्ष्य स्थूल है। पंत ने स्थूल सत्य के साथ आत्मवाद गांधीवाद को प्रतिष्ठित कर लक्ष्य सूक्ष्म बना दिया है। उद्वेगशील छायावादियों से जैसे महादेवी भिन्न है, वैसे ही उद्वेलित प्रगतिवादियों से पंत। पंत और महादेवी का लक्ष्य एक ही है, भिन्नता उनके वस्तु आधार सामाजिक चित्रपट में है। महादेवी का चित्रपट धार्मिक है, पंत का वैज्ञानिक। दोनों के काव्य रस में विभेद है। महादेवी विषाद की ओर है, पंत आह्लाद की ओर। वैष्णव काव्य की चीर अतृप्ति निवृत्ति महादेवी की अल्प चेतना है। मधु काव्य की माधवी प्रवृत्ति में पंत की रूप चेतना वेदना के माध्यम से जो असीम महादेवी के लिए करुणामय है, सौंदर्य के माध्यम से वही पंत के लिए सच्चिदानंद। ऐसी व्यापक तुलना सामजी की। ऐसी व्यापक तुलना कभी कभी खतरनाक भी होती है। एक ही विषय के छंदों का तुलनात्मक अध्ययन हमको पंडित पद्म सिंह की बिहारी सतसई तथा कृष्ण बिहारी मिश्र की देव और बिहारी नाम की पुस्तकों से मिलता है। प्रभावात्मक आलोचना। इसमें कवि अपने ही ऊपर पड़े हुए प्रभावों को महत्व देता है। वह शास्त्र का आधार नहीं लेता है, वरन अपनी रुचि को मुख्यता देता है। उदाहरण, यदि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास है तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ है, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि से कवि कोकिल कूकने, मन मयूर नृत्य करने और चातक झूकने लगते हैं, फिर बीच बीच में जो लोकोत्तर भावों की विद्युत चमकती है वह हृदय छेद कर जाती है। राधा चरण गोस्वामी विकास। यद्यपि संस्कृत और हिंदी में सूर सूर तुलसी शशि जैसी सूक्तियों तथा गुण दोष के विवेचन के सहारे स्फुट छंदों की निर्णयात्मक आलोचना तथा टीका भाष्यों और दोहों पर कुंडलियों आदि की व्याख्यात्मक आलोचना के उदाहरण मिलते हैं, पृष्ठ 247। तथापि आजकल किसी पूरी पुस्तकों की आलोचना का श्री गणेश पत्र पत्रिकाओं में ही हुआ। पंडित बद्री नारायण चौधरी ने के अपनी आनंद अकादमी नाम की पत्रिका ने कुछ आलोचनात्मक लेख लिखे। स्वनाम धन्य आचार्य द्विवेदी जी ने अधिकांश में तो गुण दोष विवेचन ही किया, किंतु कुछ प्राचीन ग्रंथों की परिचयात्मक आलोचना भी दी। मिश्र बंधुओं ने गुण दोष विवेचन की पद्धति को तो जारी रखा, किंतु पाठकों का ध्यान कवियों की विषयगत और भाषा संबंधी विशेषताओं की ओर भी आकर्षित किया। देव को बिहारी के ऊपर स्थान देकर एक विवाद उपस्थित कर दिया, उसी से हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की नींव पड़ी। पंडित पद्म सिंह शर्मा की बिहारी सत्सई की भूमिका और कृष्ण बिहारी मिश्र की देव और बिहारी नाम की पुस्तकें इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आचार्य शुक्ल जी ने जैसी तुलसी और सूर की उत्कृष्ट व्याख्यात्मक आलोचनाएं दी। उन्होंने कवि का महत्व समझने के लिए उससे संबंधित काव्य सिद्धांतों को भी दिया, कवि के भावों को अपनी आलोचना के आलोक में चमका दिया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी तथा उनके शिष्य डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल ने निर्गुण का पक्ष अधिक लिया, शुक्ल जी ने सगुण का लिया था। आजकल अधिकांश अच्छी आलोचनाएं व्याख्यात्मक शास्त्रीय और मूल्य संबंधी समन्वयात्मक होती हैं, जिनमें भाव पक्ष एवं लोक पक्ष को समान महत्व दिया जाता है, किंतु कहीं किन्हीं में भावुकता का पुट अधिक रहता है जैसे शांति प्रिय द्विवेदी में, और किन्हीं में बौद्धिकता का प्राधान्य अधिक रहता है जैसे नंदलाल वाजपेयी तथा डॉक्टर नागेंद्र आदि में। शास्त्रीयता का पुट व्यक्तियों में घटता बढ़ता है। शास्त्रीयता को महत्व देते हुए भावुकता और लोक पक्ष को यथोचित मान देने वालों में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, शैली मुख, सत्येंद्र नगेंद्र, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रभृति मुख्य हैं। ये आलोचक गण प्राचीन रस पद्धति के साथ वर्तमान शिल्प विधान को मिलाकर कवि की कृतियों की व्याख्या करते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी बख्शी जी तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि ने संत साहित्य की भावधारा का रहस्य समझने में सराहनीय कार्य किया। आजकल की आलोचना में विश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। वर्तमान आलोचकों के मुख्य रूप से तीन वर्ग किए जा सकते हैं। एक वे जो भाव सौंदर्य के साथ कला को यथोचित मान देते हैं। ऊपर जिन आलोचकों का उल्लेख किया है वे इसी समुदाय के हैं। डॉक्टर नगेंद्र इलाचंद जोशी प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिकता की ओर भी गए हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने कला पक्ष की उपेक्षा तो नहीं की, किंतु भाव पक्ष को अधिक महत्व दिया है। कुछ लोग प्रगतिवादी आधार पर भौतिक मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। प्रगतिवादी आलोचकों में श्री शिवदान सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा अज्ञे जी, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर रंगे राघव प्रवृत्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर पृष्ठ 248। धीरेन्द्र वर्मा तथा उनके शिष्य वर्ग आलोचना में खोज और इतिहास को अधिक महत्व देते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने तुलसीदास पर एक खोजपूर्ण ग्रंथ लिखा है। अब तो प्रायः सभी कवियों के अध्ययन निकल गए हैं। इसी दिशा में डॉक्टर राम रतन भटनागर ने अच्छा प्रयत्न किया है। अन्य लेखकों में सर्वश्री सदगुरु शरण अवस्थी, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र तुलसी पर, डॉक्टर मुंशी राम शर्मा सोमसूर पर, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माचवे, शिवनाथ, डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा, डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा, विश्वंभर अरुण, गंगा प्रसाद विमल आदि प्रमुख हैं। श्री जयशंकर प्रसाद, सुश्री महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और गंगा प्रसाद पांडे ने छायावाद के सैद्धांतिक पक्ष का तथा श्री शिवदान सिंह चौहान और श्री अंचल प्रभृति ने प्रगतिवाद के पक्ष का उत्तम रीति से उद्घाटन किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का साहित्य लोचन, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री की साहित्य मीमांसा, पंडित राम दहीन मिश्र का काव्यालोक तथा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का वांग्य विमर्श साहित्यालोचना के समग्र विषयों को लेकर लिखे गए हैं। सैद्धांतिक आलोचना की ओर भी स्पष्ट पुस्तकें जैसे सुधांशु जी की काव्य में अभिव्यंजनावाद, पुरुषोत्तम जी की आदर्श और यथार्थ लिखी गई है। अब डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य विश्वेश्वर के सत प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राचीन काव्य शास्त्र की कुछ पुस्तकों यथा ध्वनियालोक, वक्रोक्ति जीवित आदि की मूल्यवान भूमिकाओं और टिप्पणी के साथ हिंदी अनुवाद भी निकल चुके हैं। उनमें भी पीएचडी डी लिट उपाधियों के लिए कई प्रबंध प्रकाश में आ चुके हैं। उनमें भी आलोचना साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है। उपन्यासों पर व्यास श्रीवास्तव और नाटकों पर जैसे डॉक्टर सोमनाथ गुप्त की किताबें निकली हैं। समाप्त।